ज्ञान जन सला क्या चक्षुन्मील
तस्मै श्री गुरवे नमः।
पंचकल्पतरु व्यक्तिपार्थिभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरस्तिते नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय सदभक्ताय नमो। यं प्रद्रदन्तमगते तमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकात्तरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानसु। तवैवास्मि तवैवास्मि न जिनामि त्वया विना इति विद्याय राधे मामचरणं कृते याविहीना जपराधलस्ते चित्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्न वृन्दे निमस्ते चरणारविन्द।
जनकी माता के दर्शन निकलते ही बस एकदम घर से निकल गए। नारी का भी खेद नहीं हुआ, जात संस्कार नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, न उपनयन हुआ, कुछ नहीं हुआ, वन में चले और पीछे से उनके पिताजी व्यास देव हा पुत्र करते हुए चले। सुखदेव को समय ने तो कोई उत्तर दिया नहीं, किंतु पैरों ने उत्तर दिया प्रतिध्वनि के रूप में, हा पुत्र चिढ़ाने लगे। कौन किसका पुत्र, कौन किसकी मैया है? दो दिन के लिए जगत में आए हैं प्रभु का भजन करने के लिए, संसार को भोगने के लिए नहीं, ये जेल खाना है इसको समझो। एक दिन इस शरीर से आत्मा निकल जाएगी, किराएदार को निकाल देगा, वो होना पड़ेगा ये घर। एक मिनट के लिए भी समय नहीं देगा, जन मैं एक मिनट के बाद में निकल रहा हूं, नहीं एक सेकंड नहीं, एक पलक रखते हुए नहीं निकलना पड़ेगा। इसलिए सुखदेव को शामिल चले गए और वो विरक्त संत थे, बहुत मधुर गला था। परीक्षित महाराज जी को जब अभी संपात हुआ तो ये बोलना आरंभ किया भागवत। अब तक हम लोगों ने नौ स्कंद तक की कथाएं संक्षेप में कुछ कुछ सुनाई है, आज से मैं दसम स्कंद की कथा सुना रहा हूं। कहते हैं निवत सतर से उपगीयमाना भव सदा स्वस्थ मनोविराम कौतम श्लोक गुणानुवादा विरज्जे बिना पशु। परीक्षित महाराज जी कह रहे हैं दसम स्कंद के प्रारंभ में, व्यास जी के पुत्र सुखदेव गोस्वामी जी को प्रणाम कर रहे हैं। कहते जी अब कथा मत बंद कीजिए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा जरा ठहर जाओ, चाहे पानी होने तो पी लो। नहीं, मैं ये कथा कार्यकर्ता साधन वही पी रहा हूं, उसी पानी का तो ये नतीजा हुआ, अब फिर पानी नहीं, अब पानी पीने का प्रश्न नहीं, सोने का प्रश्न नहीं, खाने का प्रश्न नहीं, कहीं बाहर जाने का प्रश्न नहीं, अब तो मैं लगातार सुनूंगा कंटिन्यूएशन के रूप में आप सुनाइए। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कि भगवान की कथा को न सुने? सबको सुनना चाहिए, थोड़ा सा कुछ है उधर चला जाता है। परीक्षित महाराज जी का तो नजर गया नहीं, जैसे कहीं नहीं नजर गया, बस इधर हरि कथा की वो चाहे बाजे बजे चाहे विवाह हो शादी हो कुछ भी नहीं, बस यहाँ पर चित्त एक घंटे के लिए हमारे पास लाओ, इसको हटाओ हमको गड़बड़ कर। तो करण निवृत्त कर से उपगीयमाना बहुत सदा, हम जितने भी जगत में हैं जितने भी प्राणी पशु पक्षी कीट पतंग देवता ब्रह्मा तक लेकर नीचे चीटी से लेकर मनुष्य स्त्री पुरुष सभी घोड़े गधे सब भाव रोग के रोगी हैं, प्रभरी रोग है और ऐसा रोग है कि हम लोग समझ नहीं रहे हमें रोग है किंतु है भाव रोग। इसकी जगत में औषधि नहीं है, वैसे तो किसी रोग की औषधि नहीं जगत में, सब लोग तो किसी न किसी रोग से ही मरते हैं, तुमको कोई कौन नहीं बचा देता है। जब मृत्यु की रोग आएगा तो उसको कोई नहीं बचा सकता, इसलिए कहते हैं भाव रोग पुनरअपि जननम पुनरअपि जननी जठरे गमनम पुनः फिर आ रहे, इसलिए यही रोग है जन्म होना मरना फिर माता जी के गर्भ में आना, कब से हो रहा है अनंत काल से हो रहा है, जैसे ये पृथ्वी अस्तु जो चंद्र ग्रह नक्षत्र है। कृष्ण कहते हैं हमको मना है मालूम है और जो कह रहे तुमको याद नहीं, तो हम लोग को भी याद नहीं, यदि याद होती माता के गर्भ की जातना अपूर्व जन्मों की बातें तो इस जन्म में केवल भगवान का भजन करके भगवान की कथा सुनते किंतु नहीं सुनते। मैं समझता हूं कि इसी क्वार्टरों में कम से कम तो 2-4 हजार आदमी होंगे होंगे हो सकता है 2-4 हजार कितने स्वयं किंतु बहुत गिने गिने लोग आते हैं सुनते हैं, मुफ्त में बाकी जा रही है ना। जब मुफ्त में धनमंत्री जी आए और बातें लगे तो उन पर विश्वास नहीं, बिना पैसे का कैसे देता है। शराब का दाम बहुत अधिक, उसके लिए लाइन लगती है, मदिरा के लिए शराब के लिए वाइन के लिए, और गाय का दूध शुद्ध रूप में वाला यदि काल करके भी ले आए घर पर तो ये बीता हुआ होगा ये दूध ठीक नहीं। वैसे घर घर में हरि कथा का तो देने के लिए वृंदावन मथुरा के भी कोई आए तो नहीं सुनने को आए, और जब इसका मूल्य कुछ बढ़ा दिया जाएगा नाचने गाने वाले कुछ बुला दिया जाए और शराब यहां पर दे दिया जाए तो देखो जिस लाख को आते सुनने के लिए जगह नहीं रहे। इसलिए कहते हैं कि देखो ये जो जन्म मरण है ऐसा हम लोग मदिरा की करते जैसे कुत्ते आदमी सड़क पर गिर जाते हैं कुत्ते उनका दूध धोते हैं कौन सा पानी लेकर के सुंदर पानी गर्म गर्म पानी से उनको धो देते हैं, उनको पता नहीं आता। ऐसे हम लोग इस संसार में माया के दूध होकर के ये भी नहीं सोचते कि हमें कोई रोग है, कोटि कोटि जन्मों से ये दुख को रोग है कैसे ये दूर हो रोग, इसीलिए यहां कहते हम लोग और उसके रोगी हैं, कृष्ण के दास दासी हैं, इस जगत में आए हैं भगवान का भजन करने के लिए केवल, किंतु ओटने लगे कपास ओटने लगे और भगवान का भजन भूल जाते हैं। माता के घर में प्रतिज्ञा होने के लिए प्रभु अब इस बार हमको निकाल दे छठी के घर से, छठी घर ही पेखाना पेशाब भरा हुआ अब शरीर में जितना गंदा है उसमें भरा पड़ा उसमें से निकालो प्रभु अब मैं मारा। उस समय में प्रतिज्ञा करता है कि मैं निकल करके अब भजन करूंगा, अब कभी माया में नहीं पड़े, और जब ही माया में आया और गर्भ से निकला बैलों ने माता ने दूध ले लिया उतारने लगी भूल गया, फिर लग जाए गोरख धंधे में शिवरात्रि के फेर में 99 के फेर में वो चुपल है। इसलिए रोग है ये हम भगवान को भूल चुके हैं और इसीलिए संसार में जितने दुख आ रहे हैं यदि भगवान को नहीं बोलते तो नहीं होता, यह है भाव। सुखदेव गोस्वामी जैसे संत परम वैराग्य वाला नगत प्रताप सही संसार से परम वैराग उनको है, जानते कि संसार क्या है, संसार की कोई भी चीज नहीं है, इसलिए कहते हैं हम कपड़ा भी नहीं पहनेंगे। अरे आत्मा के ऊपर में ये शरीर का कपड़े हुआ, उसके ऊपर में कपड़े का क्या जरूरत, कुछ नहीं, इसलिए कोई कपड़ा नहीं पहनते। इन बच्चों को ये जगत से हटाओ, अलग अलग रहे सब ठीक रहे, एक एक जब को एक तो कपड़े नहीं पहनते, भोजन क्या करते हैं, मिल गया तो भोजन कर ले, तो भोजन भी नहीं, एक तरह से रात को क्या जरूरत है, पैसे की जरूरत उनको है। जब परीक्षित महाराज जी की सभा में सुनाए सात दिन और परीक्षित महाराज जी सूरत से चले गए, कुछ दिया प्रणामी विनामी, कपड़े दिए, अन्न दिया, कुछ नहीं, उनको देख करके यही खुशी हुई कि हमने इसको सुनाया, ये बैठे उसने करा, उनको और कोई चीज की जरूरत नहीं है। इसलिए निहित प्रताप सही उपगीयमान यदि सुखदेव गोस्वामी जैसा परम विरक्त, कैसा विरक्त, थोड़ी सी सुन लीजिए, कैसा परम विरक्त, पीछे से सुखदेव गोस्वामी जा रहे हैं, आगे आगे सुखदेव गोस्वामी, पीछे पीछे जा रहे हैं व्यास वे, हा पुत्र कहते हुए तो आगे जाते हैं, कुछ अस्पराए नंगी वहां पर स्नान कर रही थी, सुखदेव गोस्वामी चले गए, उनको कोई लज्जा नहीं है स्नान करते गए, और पीछे से यदि व्यास जी गए श्वेत शेष शेष आए, कितने हजार वर्षों की उम्र, और उनको लड़कियों ने देखा, देखकर के लज्जित हो गई, पानी से निकल करके कपड़े धारण करके और उनको प्रणाम करके एक तरफ में हट गए। ज्ञाति ने कहा ये बड़ी विचित्र बात, हमारा लड़का 16 वर्ष का उम्र वाला और इधर से निकल गया और तुम लोग को लज्जा नहीं, और मैं आया तो तुझे लज्जा आ गई क्यों? उन्होंने कहा बात तो बहुत सीधी है, वो चले गए, हम लोगों को देखा ही नहीं, उन्होंने लकड़ी स्नान कर रही है कि क्या है या नहीं है, लकड़ी है कि लड़की है, कुछ भी नहीं देखा, और आप उनसे पूछ क्यों रहे हैं, आपको स्त्री पुरुष का शायद भेद है, उनमें भेद नहीं, ऐसे परम विरक्त, ऐसे परम विरक्त और भगवत प्रेमी लोगों की यदि कथा हो तो यह भावों की अचूक दवा है। आजकल डॉक्टरों की दवा अचूक नहीं, वैद्यों की दवा अचूक नहीं, विशेषकर के भाव रोगों के लिए ऐसा कोई दवा नहीं बनाई कि आदमी मर रहा है तो जीवित हो जाए, ऐसी कोई दवा नहीं बनाई। इसलिए कह रहे हैं जो निबद्ध कर सही जो परम वैराग्यवान है, भगवान की कथाओं को जानता है, उसी के रस में डूबा हुआ है सब समय, उसके मुख से यदि ये भागवत की कथा हो जिसको संसार की किसी चीज की जरूरत नहीं है, कृपा करके हमारे लिए भावों की औषधि देकर के दे रहे हैं, जरूर उसका सेवन करना चाहिए। ये दवा कैसी है, बहुत राष्ट्रोक्ति मनोभिरामा, इस जगत में दवाएं जो होती हैं कड़वी होती हैं, बहुत कड़वी, ऊपर से सुखा कोशिश कर दे, ऐसा आदमी ले नहीं सकता, ऊपर से चीनी का कोटिंग दे देते हैं सुपर कोटिंग, किंतु भगवान की कथा सुनने में भी कड़ल रहता है, और कानों में जाने पर जब इसे विचार करते हैं बहुत ही मधुर लगती है ये कथाएं, और उसका फल कैसा है, गुरु वृंदावन में इस जगत के फिर सारे दुखों से झंझटों से निकल करके भगवान के चरणों में पहुंचा देती है कथा, ये हरि कथा स्वयं कृष्ण है, भगवान का नाम जैसे कृष्ण है उनकी कथा भी स्वयं रूप से कृष्ण है, ऐसा समझो, वो कथाएं ऐसे महापुरुषों के मुख से निकले और कान के माध्यम से हमारे हृदय में जाए तो उसे क्या करती है ये कृष्ण, उसको झाड़ करके पवित्र करके जितनी गंदी चीजें हैं, गंदी चीजें क्या, काम को लोभ मद मोह मात्सर्य वैष्णवों के प्रति द्रोह वैष्णवों की निंदा हरिनाम के प्रति निंदा अपराध अपवित्रता सबको दूर कर देती है। ये ऐसी कोई जगत में चीज ऐसी कोई नहीं है जो हमारे हृदय को परिवर्तन कर दे, ऐसी कोई गवाह नहीं है, केवल यही एक गवाह है जो कि हृदय को भी पवित्र करके परम साधु बना दे। जगाई माधाई तो पापिष्ट व्यक्ति किंतु नित्यानंद की कृपा से एकदम परम साधु बन गया। एक देश की हरिदास ठाकुर के तीन दिन के हरिनाम की कथा सुन देते परम संत हो गई, बड़े बड़े साधु लोग उसका दर्शन करने के लिए। हरिनाम में हरि कथा में इतनी ताकत है। तो कौन देखिए कौन इसे नहीं सुनेगा हरि कथा, इसका कौन नहीं पान करेगा जो आत्मघाती। इसीलिए कार्य निवृत्त तरसई उपनियमान बहुत सदास्तो त्रिभनो विरामा तो उत्तम श्लोक गुणान बाधा ब्रज्ञे बिना पशुना। जो पशुघाती होगा केवल यही नहीं सुनेगा। पशुघाती किसको कहते हैं? कसाई लोग पशुघाती हैं, गायों को सब जानवरों को काटते हैं। बैलिया भी जो जंगल में शिकार करने जाता है पशुओं को मारता है, उसे भी पशुघाती कौन है? जो अपने पशु को अपनी आत्मा का स्वयं ही विनाश कर रहा है वो आत्मघाती। सिसाइड जो करते हैं ना, बीज खा लेते हैं, रेल की पटरी पर हो जाते हैं, खूटी में रस्सी बांध करके छत से बंद करके पीछे फेंक जाते हैं, ये लोग आत्मघाती है। किंतु यही आत्मघाती नहीं है, ये शरीर घाती है। ये शरीर घाती है, शरीर को हटा देते, आत्मा का घात नहीं करते, मारते नहीं। आत्मघाती कौन है? जो हरि कथा नहीं सुनता, भगवान का नाम नहीं करता, भगवान का भजन नहीं करता। ये लोग अपने आत्मा का हनन करते हैं। एक आदमी विष खा लिया मर गया, शरीर छूट गया, दूसरे शरीर में चला गया। तो ये जो आत्मघाती जो हरि कथा नहीं सुना, वो अपने आत्मा का ही घात कर दिया। कोटि कोटि जन्मों से भी यति छड़ गया, ये जन्म मिला था भगवान का भजन करने के लिए। शायद हमने छोटी सी कहानी सुनाई होगी कि नहीं, मुझे याद नहीं। एक भिखारी भीख मंगवा मांगता हुआ जा रहा था, किसी गांव में या शहर में पहुंचा, भिक्षा दो माताएं भिक्षा दे दो, राधे राधे कह करके भिक्षा मांगते हैं, तो भिक्षा कर दो तो यार। एक चाह दीवारी थी दीवार, उसके अंदर में घुस गया जैसे इसके अंदर में कोई होगा, अरे भैया भिक्षा दो मांग रहा था। तो उसने वो चाह दीवारी जो थी दीवारें 84 लाख मील में थी, 84 लाख मील की थी। उसमें एक दरवाजा था 3.5 हाथ का और 1 हाथ चौड़ा और 3.5 हाथ ऊंचाई वाला एक दरवाजा था उसके अंदर में। दूसरा कोई दरवाजा भूल तो गया, अब दरवाजा खोलते हार गया, देखा कोई इसमें है भी नहीं। आग जल रही, उसका तार धुआं लग रहा था, मधुमक्खियां काट रही थी, सांप उसमें दसने के लिए तैयार, और बर्फ कभी बरसा कभी सांप कभी कुछ, वो घबरा गया। कभी जल्दी से इसको पार करना है, हमको दरवाजे में आना है। उसने देखा जैसे बहुत दिनों तक दरवाजा नहीं आया, लाख उसमें जन्म बीत गए। वो एक लठिया लेकर के अंधा व्यक्ति लठिया लेकर के और दीवार पर हाथ रख दिया और करके देखा जैसे अब चले, चलते लाखों वर्ष बीत गए, 84 लाख जन्म बीत गई। जब दरवाजा आया वही एक हाथ चौड़ा और 3.5 हाथ का लंबाई वाला, जब दरवाजे के पास में आया लठिया लेकर के, तो ऐसे हाथ जो लेकर के चल रहा था पकड़ते हुए उसके सिर में ही या कहीं इधर उधर खुजलाहट हो गई, बड़ी जोर से खुजली मची और जैसी खुजली मची उसने हाथ उठाया और खुजलाने लगा। ऐसे ऐसे जो वर्षों तक लाखों वर्ष में जो दरवाजा नहीं मिला, दरवाजा खोलिया भी मिलेगा। आई इतने में एक हाथ पाला और 3.5 हाथ पाला, दरवाजा पार हो गया। जब खुजलाहट खत्म हो गई तो हाथ रखा फिर अब देखे और 84 लाख जन्म हुआ। इसको यह समझो भगवान ने हमें एक हाथ चौड़ा और 3 हाथ ये दिया, यही शरीर ही हमारा दरवाजा है, भव सागर से निकल देता, और कोई नहीं है। 84 लाख जन्मों के बाद में, कोटि कोटि जन्मों के बाद में ये मनुष्य शरीर मिला है, ये भवों के लिए नहीं है। अरे भूख लो विश्व कर देने में चले जाओ, तुमको कितने बच्चे पैदा होता है, एक बच्चा एक वर्ष में और भी पांच छह वर्ष, इसके बाद में तो होगा नहीं। और सुकरी के एक साथ में 16, कच्छप को एक साथ में 1000 बच्चा है, और जानवरों के बहुत से बच्चे पैदा होते हैं एक साथ में। इसे दूसरी जगह जाएंगे तो हमको बच्चे नहीं मिलेंगे, खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी जो इस जगत में हम लोगों को इतना परिश्रम से नहीं मिलती। उनको देखे देखते कि विवाह के लिए लाखों रुपये की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए वो जन्म बल्कि अच्छा है, वो कहीं मरेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं पैदा हो जाएंगे, मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। यही एक जीवन है जिसमें भगवान की कथा, भगवान का नाम सुन करके, साधुओं का संग करके हम इस भवसागर से निकल करके अमृतमय कृष्ण के धाम में जाकर के उनकी सेवा पा सकते, जहां पर मृत्यु नहीं, जन्म नहीं, दुख नहीं, पिताप नहीं, कोई शोक नहीं, कोई मोह नहीं, कोई ताप नहीं, ऐसे उसमें हम जा सकते हैं। इसलिए कहते हैं ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा पशु भाती केवल, आत्मघाती, आत्महत्यारा, जो भगवान की कथा नहीं सुनेगा। इसलिए सबको सुनते, जो नहीं सुनते हैं उनके जैसा संसार में आत्मघाती पापी जगत में सुनते, मनुष्य जीवन का उपयोग नहीं समझते भाई, अभी जाने की जरूरत नहीं, अभी तक फिर जन्म नहीं जाएगा, पैसा मिलेगा हरी कथा सुनने से, पैसा मिलेगा पर नहीं तो अरे पैसा का पास मिल जाएगा, कितना आश्चर्य मिलेगा जिसका कोई ठीक नहीं, यदि आश्चर्य चाहते हो ध्रुव को आश्चर्य नहीं मिला, प्रहलाद को नहीं मिला, युधिष्ठिर को नहीं मिला, इनसे भी आश्चर्य मिल सकता। इसलिए हरी कथा का मूल्य, जबकि परीक्षित महाराज जी को ये हरी कथा सुनाने बैठे सुखदेव गोस्वामी जी, उस समय देवता लोग वहां से उपस्थित हुए, अमृत का कलश लिए हुए। तो ये सुखदेव गोस्वामी जी, ये मरेगा नहीं, इसको ये कलश दे दीजिए, अमृत पिला दीजिए, और ये हरी कथा हमको सुनाइए, इसको यहां से भगाइए, ये लोग न सुने, इनको अमृत लेकर के बांटिए, हम लोग अमृत जरूरत नहीं आए, इनको दीजिए और हरी कथा हमको दीजिए। सुखदेव गोस्वामी जी ने हंसा और हंस करके बोले, अरे देखो परीक्षित महाराज इतना बेवकूफ नहीं है जितना कि तुम लोग हो, वो अमृत पी करके भी थे इन लोगों मग था, उसने कितने कितने खराब काम किए, गौतम की अहिल्या की नारी के पास में किसने दिया जो अमृत को पान किया था, वृताशिव से लड़ाई क्यों की, कर्ण के पास में जाकर के उसे कर्ण के कुंडल इत्यादि क्यों मांग लाए, देवताओं के असुरों के साथ में लड़ाई क्यों करता है, काम को लोभ मात मोह से नहीं जाएगा, ये हरी कथा से ही एकमात्र जाएगा और भगवान के चरणों से उदय, इसलिए भगवान की कथा को सुनना। इसलिए आप कहते हैं पानी पियो, मैं पानी नहीं पीता, आप तो अपनी कथा जैसे कह रहे थे वैसे आ रहे। अब हम कुछ कथा के तरफ से उतरते हैं, खूब ध्यान से सुनेंगे। कृष्ण जी मथुरा में अवतरित हुए भाद्र मास की अष्टमी के दिन, अंधकार चारों तरफ से वर्षा रिमझिम रिमझिम वर्षा हो रही थी, इसलिए रिमझिम हो रही थी वर्षा, सभी लोग सो जाए, घर से कोई निकले नहीं, बहुत सा काम करना है, जोग माया ने ऐसा किया, इसे सब लोग आराम के साथ में सो रहे थे, पारेदार वाले भी सो गए। और उसी समय में मथुरा में देवती के गर्भ से वहीं पर हथकड़ी बड़ी लगी हुई थी और कृष्णचंद्र जी अद्भुत में अवतरित थे। यहां तक तो भागवत में स्पष्ट से लिखा, किंतु गोकुल में क्या हुआ ये लिखा नहीं, लिखा तो है किंतु स्पष्ट रूप में जैसा चाहिए ना नहीं लिखा, लिखा है अच्छी तरह से लिखा है, हम लोग समझ नहीं सकते। ठीक उसी समय में जसोदा जी का भी एक लड़का हुआ, यहां हुआ चतुर्भुज देवकी के गर्भ से जेल खाने के अंदर में, संघ चक्र गदा पद्म लेकर के लंबे लंबे गुगुराजे केस और सोने का मुकुट, बड़े बड़े रत्नों का और पीतांबर पहने हुए अद्भुत रूप, देवतालों की स्तुति करने लगे, उसकी बच्चा कर रहे हैं। और गोकुल में क्या हुआ, जसोदा जी को एक लड़का हुआ, छोटा सा बच्चा, वो गर्भ से निकला, ये घर से निकला नहीं, झट प्रकट हो गया और बोला कि हमको गोकुल में दिया। ये लोग सोचे कैसे जाएंगे, इसलिए बेड़ी झनझन करके खुल गई, दरवाजा गेट खुल गया, बसा और जोरों से होने लगी। बस उन्होंने अपने गोदी में उठाया और लेकर के चले। अब उधर में यमुना जी में बहुत भीषण बाढ़, जब वहां पर लेकर के चले और इधर में गोकुल में कृष्ण को कृष्ण पैदा हुए और उसके पास पीछे ही आठ घंटे के बाद में एक लड़की भी पैदा हुई। इसको कहते हैं जय संतान। कहां? गोकुल में। ये हंस हरिवंश पुराण में और सब पुराण में, ब्रह्मांड पुराण में और सब पुराण में इसका प्रमाण दिया जाता है, भागवत में भी है और हम इसे बता रहे हैं। अब वहां पर गए जाकर के, जब उनको तो कुछ मालूम नहीं हुआ, किंतु जिस समय ले जा रहे थे उसी समय में वो जो स्वयं जो लड़का है चतुर्भुज को अपने तरफ में खींच करके मिला दिया। उन्होंने देखा जैसे हमने लड़के को रख दिया, यही स्वयं है, और वो दोनों मिलकर के एक हो गए और खाद पर वो अनंत पर हो गया और जो लड़की वहां थी उसको उन्होंने उठा लिए और फिर उसी पात्र में रख करके दो। इनको कुछ उपाय बना ऐसा नहीं, यशोदा जी सोई थी मीठी मीठी, उसको कुछ वेदना हो रही थी, मालूम हो रहा था कि हमको कुछ बच्चा हो रहा है, किंतु लड़का हुआ कि लड़की हुई कि लड़का लड़की दोनों कुछ पता नहीं। अब लेकर के आए, दरवाजा पहले जैसा बंद हो गया और उस लड़की को उठा करके फेंका, यही हो सकता है कि हमें मारे, किंतु लड़की उनके हाथों से निकल गई कंस के और आकाश में चली गई और जाकर के बोली रे दुष्ट कंस, तेरे मारने वाला तो और प्रकट हो गया, तू मुझे मार करके क्या कर लेगा, हमको कैसे मारेगा। आकाश में चली गई और आठ भुजा वाली बन गई, अष्टभुजा दुर्गा का रूप धारण और आकाश मार्ग से चली गई। वहां पर सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा अदृश्यत अनुजा विष्णु, अदृश्यत अनुजा मैंने उनकी अनुजा, अनुजा मैंने होता है अनुज को कहते हैं छोटा भाई और अनुजा मैंने छोटी बहन, अनु मैंने पीछे से पैदा हुआ, विष्णु की विष्णु कृष्ण मथुरा में तो कोई लड़की हुई नहीं, ये लड़की कहां हुई गोकुल में, तो गोकुल में कृष्ण का जन्म हुआ क्योंकि उनकी अनुजा पीछे से जन्म, इसलिए यहां पर कृष्ण के साथ में एक और लड़की पैदा हुई थी जिसमें वो कृष्ण रह गए, उस कृष्ण को मिलाकर के एक हो गए और लड़की रह गई लड़की को पीछे, नहीं तो भागवत में ऐसा नहीं लिखा जाता। दूसरी बात नंदत ऊपर आत्मज उत्पन्न ने नंदव नंद भी पुत्र के पैदा होने पर उनका जात संस्कार किया, नारी छेदन करवाया, ब्राह्मण को बुलाया, गाय गांसी वस्त्र स्नान करवाया। अरे यहां पर यदि जात कर्म होता है लड़की को स्त्री को बेटा होने पर बेटी होने पर नारी लगी हुई रहती है, उस नारी को छेदन होता है, मथुरा में हुआ नहीं हुआ, कहां हुआ गोकुल में, तो किसके दर से निकले यशोदा जी के दर, नहीं तो नारी छेदन कैसे होता है। नंद को आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद को आनंद भयो ये गान कहां हुआ गोकुल में हुआ, गोकुल में बधाइया बजी सब गोपी लोग सज करके आए, मथुरा में कुछ नहीं हुआ तो सोलह पर के समान वहां पर आदिभूत हो गए, इसलिए विष्णु के रूप में आदिभूत हो गए, यहां पर कृष्ण स्वयं भगवान यशोदा जी के दर, इसलिए इसके और भी लाख प्रमाण है भागवत में इधर उधर सर्वत्र। अच्छा मान लो कि इन प्रमाणों की जरूरत नहीं है, हम एक जागतिक नीति के द्वारा स्थिर करेंगे, कोर्ट में केस हुआ ये नंद बाबा का बेटा है मैं यशोदा जी का, हम लोगों के पास में मान ले कि मैं जज हूं, हमारे पास में केस है, अब हमको निर्णय देना है, ये देखना है, वो कहते हैं कि मेरा बेटा है वसुदेव और देवती और एक तरह में यशोदा जी और नंद बाबा कह रहे हैं कि मेरा बेटा, अब विचार किया जाए। अच्छा बेटा तो तुमको जन्म दिया कृष्ण, तुम ये बताओ कि तुम उनकी बेटी ले आए था कहां, बेटा रखाया था कहा, बातचीत करके बेटा रख करके बेटी ले आया। अच्छा तो तुम बेटी लौटा दो, बेटा ले जाओ। लौटाया बेटा कभी? हमने 1000 रुपये में एक गाय दी। फिर वो आदमी कहता कि नहीं भाई ये गाय हमारी लौटा दो, हम नहीं बेचें। अच्छा तो 1000 रुपया दे दो, पैसा भी नहीं देंगे हम, पैसा भी नहीं देंगे और गाय भी नहीं देंगे, ये कभी होगा? अच्छा तो नहीं। अरे तो भाई तुम्हारा बेटा सब तो होगा जब तुम उनकी लड़की को लेकर के लौटा दो, अपना बेटा ले रहे हो, कभी किया है? नहीं किया। उनका बेटा कैसे रहा? इसे उनका बेटा नहीं है, ये जसुदा जी का ही बेटा है, उनके दर से निकला था। इसलिए इस चीज को समझो, जसुदा जी का ये बेटा है। अब देवी जी का बेटा कैसे नहीं हुआ? उसमें लिखा हाँ, अंश के रूप में, अंशिक रूप में, नारायण के रूप में उनके यहाँ पुत्र पैदा हुए। जैसे नारायण जन्म नहीं लेता वैसे समस्या पर बता दो, लेकर तुम वहां पर पैदा हो गए। इसलिए ईश्वर के रूप में अवतरित है, बेटे के रूप में नहीं, गर्भ धारण करके नहीं, नारी के साथ में नहीं। इसलिए जन्म लीला हुई गोकुल में और अवतार कहां हुआ? मथुरा में। कृष्ण एक साथ में लाखों रूपों में यदि राज में हो सकते हैं तो क्यों नहीं यहां हो जाएंगे? इसलिए कृष्ण के लिए कुछ भी करने की बाकी नहीं है, वो सब कुछ कर सकते हैं। एक साथ में उनके भी पुत्र, उनके भी पुत्र, इनका आंशिक रूप में पुत्र 1% और जसोदा जी के नंद बाबा के 100% पुत्र है। इस रूप में समझो, इसलिए जसोदा जी का उतना लाल किया था, देवकी का बस उतना नहीं। कभी कभी ये हाथ जोड़ करके और सौ स्तुति करते थे कृष्ण का, क्योंकि जसोदा देवी कृष्ण का ऐसा दे देकर के भी कभी भी नहीं कहा कि आप भगवान हैं। इसलिए जसोदा जी का, नंद बाबा का कृष्ण के प्रति अथाह अनंत प्रीति है, उसको साधा जाने नहीं सकता। इसलिए जसोदा जी के ही पुत्र है, सब शास्त्रकारों ने और सभी लोगों ने यही मिली, इनके आंशिक पुत्र है। इस चीज को समझा जाए, जो लोग ये समझते हैं ये देवी वस्तु के लड़के हैं और उन लोगों ने पाला पोसा क्यों, यह गलत है, ऐसा नहीं है। बल्कि कोई भी गोपियां उनकी साक्षी जो थी जिस समय उनका पुत्र पैदा हुआ, वो कैसे कहेंगे हमने तो आंखों से देखा ये उसका लड़का पैदा हुआ? इसमें मथुर वाले कहेंगे कि इनका पुत्र, किंतु वृंदावन के जो ने कोई भी है वो कभी भी नहीं स्वीकार करेगा कि ये तुलसी के पुत्र है। वो लोग कहेंगे कि हमने देखा, हमने गान गाया, हमको कपड़े मिले। बोले लोग कहेंगे कि हमको अंगरखा मिला, वो जो पहनते हैं ना वो ये बांधने वाली कमी मिली, पगड़ी मिली। कृष्ण को गगन, नंद को आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, और उन्होंने दिया क्या? बूढ़ों को दिया पालकी और बच्चों को खेलने के लिए खिलौना और लोगों के लिए हाथी घोड़े दिए, हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा, हाथी बिनो घोड़ा बिनो और दिया पालकी जय कन्हैया लाल। तो बूढ़ों को दिया पालकी कहने के लिए और लोगों को दिया ये सब चीज आनंद से दिया। वसुदेव जी ने क्या दिया लड़का हुआ तो? कुछ नहीं दिया। इसलिए ये समझो ये किनके लड़के हैं? वसुदेव है, नंद और यशोदा जी के पूर्ण पुत्र और आंशिक रूप में वसुदेव, ऐसा समझिए। कैसे ये पुत्र हुए, कैसे सुंदर? यशोदा जी दूध दही मंथन कर रहे हैं, कृष्ण को सुला दिया है पलंग पर। रोज वालिया पास की आती हैं यशोदा जी की सहेलियां कि तेरे लाला ने आज हमारे घर में मटकी तोड़ दी, दही खा लिया, मक्खन खा लिया, इसको बदलो और नहीं तो ये आगे चल करके न जाने कैसा भयानक होगा। अभी बच्चा है, अभी इसको ठीक करो। यशोदा जी हंस देती, मुस्कुरा देती, हमारा बच्चा चोरी करना क्या जाए? कभी किसी के घर में 5-6 बच्चे ले लिए और उनके घर में घुस गया, जिसके घर में वो घुसा उसकी मैया दधि मंथन कर रही और बछड़ा वहां पर बैठा बंधा हुआ है, गाय भी वहीं पर है, उसी का बेटा कृष्ण के साथ में खेल रहा है। कृष्ण ने कहा जैसे दोस्त यार जाकर के बछड़े को खोल दो और मैया देखो जब मैया दुख किया है ऐसा, तो उसे जाकर के वही बच्चा
उस बछड़े को खोल दिया और वो दूध पीने लगा और ये कहता है, अरे भैया बछड़ा दूध पी रहा है, बस गधे छोड़ करके चली गई वहां पर बछड़े को खोल। इधर घर में 10-12 आदमी बच्चे बस सब घुस गए और जितना मक्खन दरी दूध सब खूब खाया, बंदरों को लुटाया और जब वो दौड़ करके आया ले देखो देखो तो इसमें खा करके मुस्कुराता हुआ उसको दिखलाता हुआ चला गया, अंगूठे दिखलाते हुए। किसी गुरु ने एक दिन पकड़ लिया, कहा जैसे क्यों पकड़ती है, तो मेरे घर में कुछ घुसाया तो घुसाया तो ये तेरा घर है कि मेरा घर है, ये घर मेरा, ऐसे मुस्कुरा करके हंस दिया जो गोली गोपी भूल गई और उसको वहां से भाग गया मुस्कुराता हुआ। एक दिन कई गोपी उसे पकड़ भी लिया अच्छी तरह से, आज छोड़ेंगे यहीं, अरे तू हमारे घर में क्यों आया, हमारा बछड़ा कहीं गुम हो गया। तो बछड़ा तुम्हारा गया, बछड़ा तुम्हारा यहाँ आया था, हमने देखा वो इस घर में घुसा, तो कहा तुम्हारा बछड़ा, अच्छा तो देखो वो गधी के मटके में उसने हाथ दिया तो उसने और निकाला एक छोटा सा मार्बल का एक छोटा सा बछड़ा था और निकाल के देखो हमारा बछड़ा इसी में गया। वो इनकी बातें सुनकर के मुस्कुरा देती हंस देती। एक दिन तो गोपी ने पकड़ लिया, कहा जाए यशोदा जी को लेकर के जाऊंगी देखाऊंगी। वो उस कृष्ण को पकड़ करके ले आई, अंधकार भी कपड़े से उसका मुख ढका हुआ, जब यहां आई तो उसने कहा जी तेरे लाला पाज में पकड़ करके ले आए, देख रहे थे तुम विश्वास नहीं करते। और यही उसकी मैया यशोदा जी आई, बोली जी कहा दिखाओ तो हमारा तो लाला भी सो रहा है, सचमुच में कृष्ण उस समय सो रहे हैं और उसके घर में पहले चले गए। अजय देखो तो कहा है हमारा लड़का, तो देखा उसका कपड़ा हटाया मुख का, तो देखा जी उसी का लड़का जिसने पकड़ कर खेला। ऐसी ऐसी अद्भुत लीलाएं ये कौन कर रहा, पर ब्रह्म साक्षात कृष्ण साधारण नहीं, इसलिए जो सुना मैया को ये पता नहीं कि हमारा लाला कैसे कैसी पीड़ाएं करता है, इसलिए वो उलाहान के बहाने इनके पास में यशोदा जी से कहते देखो तो तुम्हारे घर में पैदा हुआ हमारे घर में कैसी कैसी मधुर लीलाएं करता है, ऊपरी प्रसन्न होती और प्रभु से कहती हमारे घर में ये कृष्ण आए चोरी करने के लिए, बेटी तो नहीं लेता, कहता कि हमारे घर में बेटी की कमी है, चोरी से ही खाने की उसकी लत। आज यशोदा जी के घर में कुछ हुआ, वो सो रहा है, उठा भोर में, और यशोदा जी क्या कर रहे हैं, बहुत ही अद्भुत सुंदरी यशोदा जी श्यामला शरीर दोहरा चेहरे द्वारा मैंने एकदम दुबली नहीं, खूब मोटी भी नहीं, कमर पतली पर तक्षल चौड़ा, रेशम के वस्त्र पहने हैं और गधी मंथन कर रही है ना, एक खंभे में रस्सी लगा दिया और घर में घर कर रही है, सोने के कंगन कड़वे बज रहे हैं मानो के करताल है, सुंदर मधुर उनके झनझन ये हाथ से और उनके मक्खन जो मथ रहे हैं वो मानो घर घर कर रहा है, भिक्तान भिक्तान उन लोगों को धिक्कार है जो कि कृष्ण का भजन नहीं करते, उनको धिक्कार भिक्तान भिक्तान भिक माने क्या है, उनको धिक्कार जो कृष्ण का भजन मानो वो कर रहा है। और अत्यंत सुरोगी कोई को भी बोली को मात करने वाली पर को यशोदा जी आंखें बंद करके जो घर घर करते हैं पसीने के बुंदे माने मोती उनके सिर से छप रहे हैं, केश का बंधन खुल गया उसको सब गिर रहे हैं और बड़े सुंदर से गा गा करके कीर्तन कर रहे हैं, गोविंद दामो धर्माधवे थी गोविंद दामो धर्माधवे थी गोविंद दामो धर्माधवे थी दुखले संघत कंदुरांश संघंतयंतो मुसलई प्रमुखा गायंती गोप्या जनतांगा गोविंद दामो धर्माधवेति गोविंद दामो धर्माधवेति गोविंद दामो बड़े सुंदर सबसे गा रही है, तन भूल गई सब कुछ जगत को और गोविंद कृष्ण की लीलाओं को स्मरण कर रही है। इतने लोग छोटे वो वहां से उठा बोला तो मैया मैया चिल्लाने लगा, मैया मैया तो है नहीं तो आंख बंद करके और मैया मैया इधर खोज रहा इधर खोज रहा, मैया पलंग पर है नहीं, इधर में भूख लगी है, अभी उम्र अभी 3 वर्ष की भी कम नहीं, 3 वर्ष से कम, 3 वर्ष की उम्र। बहुत दूर से वो दूधी का मंथन कर रही है, याद ही नहीं मुझे, हमें छोड़ दिया है। तो वो जो उसे वहीं से, उनका अस्त्र क्या है, बच्चों का रोना, तो जो उसे से रोने लगा, जब रोने से लगा तभी नहीं सुनी, वो तो तन्मय है। गोविंद दामो धर्मा उत्थाय गोप्य पर रात्रि भागो, सवे में उठे उत्थाय गोप्य पर रात्रि भागे। और कृष्ण का नाम जो सुंदर मधुर मधुर नाम है, जिसको वो गाते हुए गोविंद दामो धर्माधि, एकदम तन्मय हो रहे। कृष्ण की बात उन्होंने सुना नहीं, तो वो पलंग से उतरा। कैसे उतरा? छोटा सा भी बच्चा गिर न जाए, पेट के सहारे बड़ी मुश्किल से उतरा, आंखों में हाथ लगाया। कज्जल यशोदा जी ने यहां तक लंबा दिया है, अब बहुत सुंदर बुखार है मेरा, और अंजन लगाया, अब आंखों से दो चार बुल्ड निकल रहे हैं आंखों भी। तो उसके साथ में ऐसे ऐसे करने से काली कल लग गया यहां, और थोड़ा सा आंसू के साथ में मिलकर के यहां से बहता हुआ इधर गंगा और यमुना जी मिल करके बह रहे। देखो ये कृष्ण परब्रह्म जी के नाम से जल भी भय करते हैं, मृत्यु भी थरथराती है, और ये आज खुद रो रहे हैं। इसलिए दूध के लिए, किसके दूध के लिए? मैया के दूध के लिए, मैया के दूध के लिए। तो अभी जो तो गाली नहीं थी, और निकल गया कहीं गिर रहा है इधर, कुछ निद्रा का आवेश भी नीचे नीचे पहुंचा, निकल गया पहुंचा, तब जो उसे रोना, तभी जो सुधाजी नहीं सुन गए, सन्न हो रहे हैं, तब एकदम निकट में पहुंच गया, और पीछे से जाकर के एक हाथ से उसने दधी का मंथन जो होता है वो मंथनी को पकड़ लिया, और दूसरे हाथ से यशोदा जी के सिर पर उनका कपड़ा ऐसे या सिर ऐसे पकड़ लिया। यशोदा जी ने कहा ये देखिए मंथनी को पकड़ लिया, और उसने से कहा ऐसे लट करके देखी तो श्याम कन्हैया, क्योंकि जो रो रहा है आंखों से कजल बह रहा है, और अद्भुत वेश यहां लग गया मुख में, काल गाल में भी उसके लग गए हैं, चार तरफ काली हो गई, सब पूछ लिया है। अब उनको तो अब उसने बच्चे को खा करके अपनी बूढ़ी में रख दिया, दूध बनना बंद कर दिया सभी मन। इतने में अभी कृष्ण भी पी रहे थे, बड़े आराम के साथ पी रहे, और इधर में उन्होंने दूध रखा था गर्म करने के लिए, अब दही उसको बनाएंगे, इसलिए दूध उफरने लग गया। जब वो दूध उफरने लगा तो जो सोदा मैया सोचिए इसको अच्छा करने चाहिए, उसको पानी के छींटे देने से दूध नीचे चला जाएगा, इसलिए सोचा इसकी रक्षा करनी चाहिए। भाव क्या, दूध देख रहा है, यदि पृथ्वी का सब कुछ पानी खत्म हो जाए, जो कुछ भी है कृष्ण का ये जो पेट है कितना लंबा है, जो विश्व ब्रह्मांड में किया गया बहुत बड़ा पेट, और यशोदा मैया के स्थान में कितना दूध है, विश्व गंड को वो भर देंगे, फिर समुद्र का जितना दूध उनके एक बुंद दूध से वो भरा रहा है, इतना अथा अनंत यशोदा जी के स्तन में दूध है, और पिला रहे हैं किसको, कृष्ण को, जिसको त्रिलोकी या समस्त विश्व ब्रह्मांड जिस कृष्ण के उदर में है, इतना बड़ा उदर वाला कृष्ण, यदि लाखों बरस तक ये दूध पीते रहे तभी यशोदा का दूध खत्म नहीं होगा, और ये पीते पीते फिर का पेट नहीं भरेगा, इतना बड़ा भारी पेट। दूध कहता है ये तो हमारी सेवा ही नहीं है, मैं इसे सेवा में नहीं रख सकता, इसलिए अब तो प्राण देना ही, यदि इस जन्म में हमारा जन्म कृष्ण की सेवा में नहीं आया तो जीवित करने से कोई लाभ नहीं, इसलिए आदमी जन्म नहीं। सब कुछ में जिसका जीवन जिसके जीवन में कृष्ण नाम नहीं करता, भगवान की सेवा नहीं करता, वैष्णव संतों की सेवा नहीं करता, जिसके कान में भगवान की कथा नहीं जाती, वो मरने वालों से भी जीवित में मरे हुए के समान है। भौंकनी होती है ना, भौंकनी किसको कहते हैं, लोहा को की भाकी होती है, ऐसे जलाते हैं तो आग भर रखती है, इसमें लोहा गर्म करते हैं और पुलिस देकर के पीटते हैं, क्या भौंकनी सांस नहीं लेती, हम सांस ले रहे हैं, वृक्ष तो हजार वर्ष तक जीवित रहते हैं तो तुम्हारा जीवन है तो किस काम का, यदि भगवान की कथाएं कान में नहीं गई, जीवा से भगवान का नाम उच्चारण नहीं किया और शरीर से भगवान को प्रणाम नहीं किया तो ये बेकार का है। इसलिए दूध मानो आग में जल मारना चाहता है। जिसको जारी करे थारो थारो थारो, मैं भी कृष्ण को अभी दूध पिलाना बंद करके तुमको ही पिलाऊंगे, तुम धैर्य को धारण करो, एक मिनट ठहरो। इसलिए कृष्ण को रख करके और जाते हैं दूध की रक्षा करने के। कृष्ण छोड़ नहीं रहा था, उसने मुख से जोर से पकड़ लिया तन और हाथों से ऐसे पकड़ लिए और पैर से भी बंदर के बच्चे जैसे उसको एकदम जोर से लपेट लिया। यशोदा मैया हमको किंतु देखो 60,000 बल वाली कितना अपने स्तन से कृष्ण को छुड़ा रही है और नहीं छुड़ाया उसके प्राण भी पी गए। और यशोदा जी ने 10,000 की राशि करके साधारण से एक सी रोटी और उसने कृष्ण को आगे कुछ बैठ जोर से पकड़ रहा था ना, इसलिए कहा जल्दी से बैठ, हमको जल्दी से दूध की रक्षा कर। इतने अनंत विश्व ब्रह्मांड में सर्वशक्तिमान कृष्ण आदि गाना जाने बल कहां चला गया। हिरण्य कश्यप को मारने के समय सिंहदेव का बल जो था वो कृष्ण ही का बल है, वो न जाने बल कहां चला गया। रावण को उन्होंने हरा दिया, वो बल न जाने कहां चला गया। पृथ्वी को धारण कर लिया, वो न जाने बल कहां चला गया। विश्व ब्रह्मांड की पलक लगते ही ध्वंस कर रहे हैं और ऐसे जगत लाखों को भी पोस्ट से जन्म कर रहे हैं, आज न जाने कहां बल चला गया। और यशोदा जी ने उसको बैठा दिया। कृष्ण ने देखा जब ना दूध नहीं पीना भी खत्म हुआ और पैया हमको बैठा गई तो वो रोने लगे, क्रोध हुआ। क्रोध कब होता है अधिक, यदि हम दुर्बल रहते हैं बल दूसरों के सामने नहीं आ सकता, वो तो भीतर ही भीतर में हम क्रोध करते हैं और उससे फिर जाना पड़ता है, नहीं तो थप्पड़ और दे देगा। यदि तुमने इसका बात का उत्तर दे दिया ना तो और मारेगा, इससे चुपचाप रहेंगे तो क्रोध नहीं जा रहा। कृष्ण के अगर फड़कने लग गए, मैया ने हमको यहां पर रख दिया। मैया देखती है मैं प्यारा हूं, मैं दूध प्यारा है, कौन सा प्यारा है, दूध प्यारा है ना कृष्ण प्यारा है। कृष्ण ये सोचते ही बहुत क्रोधित हुए, दांत फड़कने लगे ओ, और उन्होंने देखा जैसे कुछ करना चाहिए, एक पत्थर लिया और पत्थर लेकर के, पत्थर माने क्या वो लोहा होता है, लोहा जानती है आप लोग, मसला पीसने के लिए, अब तो मशीन से पीट लो कोई जरूरत नहीं है, अब ब्लड प्रेशर हो जाए कोई काम नहीं, मुसल नहीं, चक्की नहीं, इसको काली में पढ़ करके और फिर खत्म नहीं हो सकती है। पहले का संसार सुखी होता था, एक पिता काम करता था, उसके सब बच्चे स्त्री इत्यादि सबका पालन, बूढ़े माता पिता सब पूरे परिवार का पालन करता है। अब पिता काम करता है, लड़की काम करती है, स्त्री काम करती है, उसके बेटे काम करता है, कभी पेट नहीं भरता, नजर कितना लंबा पेट हो कैसे पेट भरेगा। अभी 10-15-20 हजार की स्त्री चाहिए, नक्सिया चाहिए, कैंसर ऊपर में जो लगता है वो चाहिए, कंप्यूटर से चाहिए, अभी कार चाहिए, बाड़ी चाहिए, अभी बाड़ी भी खरीदेंगे तो पहले तो हो जाता था 10-15 हजार, 2-4 हजार रुपए में अपने आप मिट्टी का उठा लेते थे पहाड़ों के, ये सब मिट्टी में और पहाड़ बुक करके बना लेते थे, एक पहाड़ चट्टान में पत्थर रख दिया, बस हो गई मरेजा लगा लिया। और अब यहाँ पर एक फ्लैट में इतने लाख रुपये लग जाएंगे और दो बेटियां हैं देखो तो 10 लाख रुपया उनके लिए रखो, सभी मिलकर के कमा करके भी कुछ नहीं कर पाते। इसलिए वहां पर कह रहे हैं यशोदा जी जब चले गई तो वो उसको ये परब्रह्म बिगड़ गया, अब बिगड़ करके और एक पत्थर से मारा और उसके नीचे से गोलाकार हो गया कि नीचे क्यों मारा, ऊपर क्यों नहीं मारा, ऊपर में मोटा होता है और नीचे तेजी की तरफ में पतला होती है वो मट्टी, इसे नीचे की तरफ में मारा बस टूट गया, बहुत गला क्या तो। और वो जब गिरने लगा तो देख करके वाह वाह ये सब 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 निकल रहा है, किंतु थोड़े देर में उसे गंदे मैया तो भी आएगी मारेगी क्या करो, अब सोचने लगा क्यों लाख रुपया करे क्योंकि पुलिस उसको पकड़ लेती है। अब कृष्ण यहां पर चोर है, मैया से सवाल है, उसको खो जाइए वहां से आई देखा जाए नहीं, ये क्या किया ये कबाड़ टूट करके घर में घुस गया, उस घर वाली कबाड़ को टूट दिया, जो देवी मैया आई गई घर के भाग में और एक पोखर के ऊपर को उलाट करके और उस पर चढ़ गया, उल्टी हुई पहले थी उस पर चढ़ गया और मक्खन हंडिया में थी जो हाथ से नहीं पकड़ में आता उसको एक लकिया छोटी सी घीत से छेद कर रहे और उसने लेकर के खाता है बंदरों को खिलाता, बंदर भी क्यों खिलाता है बंदरों को, राम के समय में जब मैं राम था तो मेरी बड़ी सेवा थी, उस समय खिलाया पिलाए गई अपने आप फलों और पत्तियों और सबको खा करके हमारे लिए प्राण दिया था इन लोगों ने, इसलिए जन्म में खूब पिलाएंगे। इसलिए बालक अंतर से आए यहाँ कभी गाय दूध दही मक्खन सब दे अपने थोड़ा अर्थ उनको और याद पड़ी। अरे काफ सुंदी के जितने बच्चे हैं उन्होंने भी हमारी बड़ी आराधना की थी, इसलिए काकबत भूसुंडी के जितने बच्चे हैं कौन बच्चे हैं कौ कौओं को भी देना कौए और उनको खा रहे हैं बड़े टाकर के देखा कि कहाँ गया। उन्होंने देखा कि बड़ा तलाक से भी बनता है, मैं तो झटपट इसको खोल देगा। ये कहाँ गया देखा जी दही के ऊपर से गया है, इसके पैर से चिन्ह आ गए हैं और घर के अंदर में वो दही का पैर लगा हुआ चिन्ह लगा पर समझ गई दही गया है। आवाज को खोल करके थोड़ा सा देखा एक आंख से देखा अच्छा ठीक है एक देख लिया छोटा सा और लेकर के झट वो जाकर के दरवाजे के पास में छिप गए और वो फिर आ रहा है इसमें जब उधर फिर आया तो इसने झट से जाकर के एकदम पीछे पहुंची कृष्ण की नजर दो थी इधर से मैया ना जाए डर में भी था बेरा इतने सत्संग कितने त्रों से वो देख भी रहा है और खा भी रहा है और बस उनको खिला रहा है जैसे मैया ने देख करके और झट एकदम पीछे पहुंची और ऐसे यही पकड़ने की सत्संग देख करके और झट प्यार था भागा कहा रात के चलकर में जैसे दादी घर की बहू ने नहीं भाग जा सकती लोग देखे अरे ये बड़े भाग दिए रानी और जा रही है इनका रास्ते पर इसलिए लग जाएगी इसलिए किसने जान बुझ करके राजमार्ग पर चला है। उन्होंने कहा आज तुम देखें आज सब लाल लाल ले रहे भैया कराने के लिए बाहर में आज कोई नहीं नहीं आज चले करेंगे देखेंगे तो कहां भागता है बड़े जोर से कृष्ण भागे यशोदा जी ने पीछा किया यशोदा जी का इससे शरीर कहता इसे स्कूल भी है और कृष्ण भी छोटा सा बच्चा और नंगा तो कुछ पहना भी नहीं है यशोदा जी ने जो घूम पहला दिए हैं उससे बस वही और वो भाग रहा है पूरा ताजा कभी रोता हुआ भी कभी देखता हुआ सत्संग कितने को नमामि ईश्वर सचिदानंद रूपम लखत कुंडलम गोकुल हाजमान जगदाधियोलु खलाधावान परामि समत्यं नमाश्वरम सचिदानंद रूपम लगत कुंडलम गो निधाजमान कामेश्वर के कुंडल झलक रहे वो भाग जा रहा है अद्भुत रोता है तो भी अच्छा लगता है कजरिया से बचा वो भी बड़ा सुंदर सब अंग में सब माँ भी उसकी भरी पड़ी है जो खुदा जी का हाथ में लड़किया लेके किसी से देखा जैसे इसको पकड़ नहीं पाए गई लगे होगा अरे अब्दुल मारू अभी मारू तब तक सुख है मैया मुझे मत मार क्यों नहीं मारू तुमने कभी क्यों ऐसा किया चुराया और क्यों उसको तोड़ा मैया हमने नहीं तोड़ा किसे तोड़ा तो आप जो भगी की हमारे पीछे आ रहे थे ना तो ये जो सोने के जो कड़वे जो तुमने पहना वो थुक लग गया और उसके कैसे वो टूट गया हमने कैसे मैंने तोड़ा ये तो चल लड़का आप तुम्हारे मुख में ये दबी कैसे लगी है कैसे बदला नहीं है नहीं हमारे मन को क्यों है तेरे बाप के वंश में क्यों हुआ होगा लंबी लंबी बात करता है तो मैंने उठाया अब देखो बात जैसे ऐसे बात कृष्ण ऐसे करे पीछे से कृष्ण दौड़ रहे हैं दौड़ने के बाद फिर वो ब्रह्म आश्रम कर जैसे लोग उनको ध्यान में कृष्ण देते हैं तो हम लोग को रखते हैं उनके ध्यान में भी वो चल नहीं जाता और साक्षात उनसे गोपी कृष्ण जरिया भी दौड़ करके पकड़ लिया ये कैसे संभव है ये इस प्रकार से संभव है भगवान भक्तों को प्रेम करते हैं और भक्त भी भगवान को प्यार करते हैं यदि वह प्रेम यशोदा जी में अधिक है तब तक कृष्ण को पकड़ेंगे अन्यथा नहीं उनको वशीभूत करना बड़ा कठिन है इसलिए यशोदा जी कृष्ण से भी अधिक दौड़ रहे हैं मैंने कृष्ण जितना प्यार मैया से करते हैं यशोदा जी का प्यार कृष्ण के प्रति और अधिक है इसलिए पीछे से जा रहे हैं बांधने का उपक्रम कर रहे हैं अच्छा बांधने कृष्ण रोने लगे मैया अच्छा कल क्या छोड़ देती हूँ मैं तुम्हें बांध दे इसलिए बांधने के लिए बांधने का एक कारण था इसलिए बांध रहे ये लड़का कुछ बिगड़ा हुआ है यदि अब इसको क्रोध हुई है अभी क्रोध देने तो यमुना जी के किनारे कहीं चला गया है वही ब्रह्मांड रखा के आगे तक और यदि यमुना में चला गया या बल में भाग गया कहीं फिर कहां चला जाएगा, तो तुम्हें मारी देगा। इसलिए इसको पकड़कर कभी बांध लो और इसको फिर इसके बाद में मक्खन अपना निकाल करके फिर इसको खिला पिला करके दूध पिला करके संतुष्ट करते, तब तक इसको बांध करके रखो, इसको सजा नहीं मिल जाएगा, इसलिए बांध करके रखना चाहते। इसलिए कहा सकते हैं जरा घर से रस लाना तो पहले अपने केस बांधने की रस्म निकाल और बांध ले, किंतु दो अंगुल कम पड़ गई, पास में कोकर खड़ी है, कहते एक खल ये एक खल ये उदू खल, इसी के सहायता से जो कथा जो दोनों को बांध करके रखो, इस गोखल में तो इस खल को बांध दूंगी, छोटे खल को, बड़े खल में छोटे खल को बांध दूंगी, उदू खल में इस खल को बांध दूंगी। उन्होंने देखा जैसे दो अंगुल कम पड़ गई, फिर रस्सी में लाई, वो रस्सी ला करके गोपियों ने दी जोड़ा बांधा, फिर दो अंगुल लाखों रस्सियां लाई गई, गोपियां हंस रहे हैं आज ये बंधने का नहीं, देखे कैसे बनते ब्रह्मा ने इसके अनुराज में कोई बंधन नहीं दिखाई देखते, जसोदा कैसे बांध देगी, लाओ वो रस्सी अपने आप दौड़ करके ला रही है जसोदा जी के हाथ में देती है और बांधती है और कम पड़ जाती, दो एक बाजी पूरी नहीं। आश्चर्य की बात, कृष्ण की कमर 12 अंगुल थी और उसमें सोने के लिए करघनी पहनाई गई है, वो तो ज्यादा चाहता है कर नहीं दी जाती है, कमर बढ़ रही है, इधर रस्सी बढ़ रही है, एक मिल दो मिल तीन मिल चार मिल पांच मिल लंबी हो गई, किंतु एक बार भी नहीं बन रहा। ऐसा हुआ क्या, कृष्ण ने देखा जी मैया हमें मत पाना, मैं बच्चों के साथ में खेलूंगा कैसे, गोपियां अपने अपने घरों में होंगी, हमारे लिए प्रतीक्षा करेंगे, किसने कोई उत्तर देखे दिया है, वो मेरी लीला नहीं कर गायक दे रहे हैं, बच्चों को देकर के भी उनको प्यार नहीं उतना करती जितना कृष्ण को, अपने बच्चे जब पीते हैं तभी नहीं दूध देंगे, क्योंकि कृष्ण को देखते ही उनका दूध अपने आप को पुराने लगता है प्रेम से, इसलिए कृष्ण कहते हैं मैया मुझे नहीं बना, इतने उनकी योग माया शक्ति है अभिनंदन पति अति विचित्र शक्ति, उसमें ऐसा कहते कृष्ण को पता ही नहीं कमर इतनी की इतनी रस्सी भी बढ़ रही है, किंतु दो अंगुल कम, ये क्या चीज है दो अंगुल, प्रत्येक बार एक बार दो अंगुल, दूसरी बात तीसरी बात चौथी बार हजारों बार प्रति सिर्फ दो ही अंगुल, तीन अंगुल नहीं एक अंगुल नहीं दस अंगुल नहीं बस दो ही अंगुल, क्या कारण, ये कारण है जब तक हम परिश्रम का प्रयोग नहीं करेंगे साधन में भजन में निष्कपट होकर कोई भी कमना हमारे घर में नहीं रहेगी, और दिन रात भजन करेंगे उस परिश्रम को देकर के जसोदा मैया जैसे परिश्रम को देकर के कृष्ण पिघल जाएगा और पिघलने से साथ में उनकी कृपा आ जाएगा, इसलिए हमारा साधन एक अंग और कृष्ण की कृपा एक अंग, ये दो अंगों देकर के क्या हुआ, ये रस्सी दो अंगों संपर्क, अगर हम ऐसा परिश्रम नहीं कर रहे हैं जितना परिश्रम करना चाहिए कृष्ण के लिए उतना साधन भजन में, और कहते महाराज जी यदि 16 बार राउंड नहीं पूरा हुआ तो मैं क्या करूं, तो गुरु जी कहेंगे अच्छा तो 16 नहीं तो 8 करो, तो गुरु जी हमको तो वो भी समय नहीं है, अच्छा तो भाई देखो ये तुम 4 बार करो, तभी तो यही तो मुश्किल है, जैसे हाथ से शिष्य में निकल जाए, जैसे से निकल जा रहा है जो पैसा आ रहा है जो एक कपड़ा और कुछ पैसा मिल जाता है 10-20-5 रुपए, ये तो मेरे मेरे ऐसा कर रहे कोई बात नहीं है, तुम जिस दिन में खुशी हो तो उस दिन करना नहीं तो मत, गुरु जी ने लेकिन तू प्याज खाता है, मुझे प्याज खाता है भाई प्याज को तो प्याज को छूटती नहीं, तो मैं क्या कर बताइए, तो देखा जैसे ये तो मानेगा नहीं, हमारे हाथ से निकल जाएगा दूसरा किसी का किस्त हो जाएगा उसके पास में चलेंगे, अच्छा कभी कभी खा लेंगे, गुरु जी मैं एकादशी तो कर ही नहीं सकता, मैं बहुत दुबला पतला हो गया, कोई बात नहीं कभी एकादशी काली वाली करना और सफेद वाली मत करना, सामा चलेगा सामा का चावल, अरे नहीं चलता गुरु जी की हम तो हमारे पुरखे में खाते आए, अरे कभी कभी ले जाए कोई बात, ये भजन नहीं होगा ऐसे भजन से पान बीड़ी सिगरेट चाय अफेरी गांजा भांग धूम्रपान इत्यादि मत लो, यदि भगवान का भजन करना भगवान बड़ा है नहीं, ये चाय बड़ा है मैं चाय बड़ा है कि भगवान बड़ा है, भगवान को चाहते हैं उसे चाहते थे, ये विचार करो यदि भगवान हमारे सिद्ध जन से नहीं मिलते हैं तो सिद्ध विकास करते देते हैं, ऐसी होनी चाहिए, यदि इतना नहीं कर सकते तो क्या भजन का भगवान का करेगा, इसलिए कठोर कुछ करना पड़ेगा, देर रात मिलाकर के छह घंटा में एक होता है कि आज जिसको जितेंद्रिय नहीं है वो दस घंटा बारह घंटा सोता है, नहीं कम करो, हमारे लोग सुनाते हैं एक घंटा आठ घंटा सोते थे, दिन रात उनकी चिंतन में लगे रहते, तीन रात हरिणाम करते थे, अभी तुम लोग से सोलह राउंड नहीं होता और उन्होंने चौसठ इंटू तीन कितना हुआ, कितना राउंड करते थे, चौसठ उतना राउंड करते थे, बताओ तो कैसे करते थे, करना चाहिए या तो माया मिलेगी नहीं तो राम मिलेगा, दोनों एक ज्ञान में नहीं रह सकते, या तो संसार को भूख करके फिर पुनः पुनः जन्म हो और तरह तरह के दुख कष्ट भोगो, या इसमें से निकल करके भगवान का भजन करो, दोनों में से एक होगा, दोनों एक ज्ञान में नहीं रहेंगे। तो सिद्धार्थ जी कहते हैं घटा करके हंसो खूब खूब करते हैं और दाल खुलाओ तो दोनों एक साथ करो तो देखो तो होगा, मुख खुलाना और हंसना घटा करके एक साथ नहीं हो सकता, नहीं होगा, इसलिए भगवान का भजन सहज नहीं है, इसलिए इतना परिश्रम हो जो कृष्ण का चित्त द्रवित हो जाए हमारे लिए, ये एकादशी को कुछ नहीं खाते खाती, रामनवमी इत्यादि व्रत करते हैं, दिन रात हरिनाम करते हैं, चाहे कुछ मिले और मिले, हरिदास महाप्रभु जी के एक परिकर थे, उनका नाम था श्रीवास सुभाष पंडित, लेकिन महाप्रभु जी ने कहा तुम घर में कुछ खाने पीने के लिए काम नहीं करता है तो कैसे चलेगा, तो उन्होंने कहा महाप्रभु ये ताली बजाने का क्या मतलब, ताली के बजाने का मतलब यह है हम तो मदिरा लेकर के और रात भर कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण करते हैं, और यदि एक दिन नहीं खाना मिला कोई बात नहीं, दूसरे दिन नहीं मिला वो भी बात नहीं, तीसरे दिन नहीं मिला तो जब गंगा जी बैठे गंगा जी में खुद जाऊंगा, नहीं मिलेगा तो और अभी क्या होगा, उन्होंने कहा प्रभु आप धन्य, लक्ष्मी जी भीख मांगेगी कटोरी लेकर के, किंतु जो भगवान का नाम करता है मेरा ये गारंटी का दिया होगा कभी उसको भीख नहीं मांगना, और इतने पर भी विश्वास नहीं हो तो डूब मरो, विश्वास रखो भगवान का भजन करने वाला कभी भी दरिद्र होकर के भीख नहीं मांग सकता है, और लोग माने हम लोग भीख मांगने के लिए निकले थे माता पिता छोड़कर के, नौकरी चाकरी सब कुछ छोड़ दिया, जायदाद जमीन सब, अब देते हैं यहां करके भजन करने तो लाखों लोग लाखों रुपया दे जाते हैं, अरे भाई हम लोग तो डर करके कहते भाई हमको जरूरत, वो इस कौन वालों को जाओ कोई जरूरत, हमको रुपया की जरूरत, वो मंदिर बना रहे तीन करोड़ रुपया क्या तीस करोड़ रुपया लगा रहा है उसमें, तो हमको रुपये की क्या जरूरत, खाने के लिए ग्रोसरी मिल जाती है, बस में मिल जाता है, जब जाते हैं तो एरोप्लेन का टिकट मिल जाता है, हमको क्या जरूरत है, सुखदेव गोस्वामी की जरूरत है, इसलिए एक तरह से भजन करो तब तक कृष्ण की कृपा होगी, तो ये दो अंगुली कम जाए, एक अपना कठोर परिश्रम जिसको देकर के भगवान प्रवीत हो जाए, ऐसा पहले हरिनाम करने में ऐसा होता है, पहले रसोई बना लें, पति चले जाए अच्छा तो ठीक है, स्कूल में बच्चों को दे दें, इसके बाद में कोई आ गया बातचीत करने के लिए दो गाल मार लेंगे, अच्छा तो इसके बाद में दो फरोगे, अच्छा पहले भोजन कर लें, हरिनाम अभी आ गया अभी तक माला नहीं उठाई, अच्छा तो फिर शाम को कर लेंगे, शाम को इतने में दस पांच औरतें आ गई बातचीत होने लगे या पुरुष लोग तो अपने अपने काम में चले गए, समय नहीं मिला, इसके बाद में आठ नौ बजे जब आया बहुत क्रांत होकर के आया, सांस में थाली लगी हुई थी, मैंने कहा जी आप अब रात में करेंगे भोजन, इसके बाद में भोजन कर लिया, नींद आ गई कहा आप सवेरे करें, ऐसा कर सकते ऐसे भगवान में नहीं है, सबसे पहले प्रियोरिटी दो, मैं भगवान का भजन करके तब मैं कुछ काम करूंगा, हरिनाम पहले पूरा कर लूंगा इतना, इसके बाद में देखा तब भगवान का भजन होगा, तब वो द्रवित होंगे, इसलिए यशोदा जी ने उनको बांधा इस रूप में, जब यशोदा जी के पसीने जो गिरने लग गए कृष्ण देखा कृपया सिख संबंधने, यशोदा जी का परिश्रम देखा पसीने के बूंदे गिर रही हैं, उनको दया आई और दया आते ही वो जो माया भग गई वहां से और कृपा शक्ति आई, कृपा से हृदय कृष्ण का द्रवित हो गया और झट वो उतने ही रस्सी लगी जो केश बांधने वाली थी और बाकी रस्सी सब रह गई और उसको बांध करके उस दुखों से बांध दिया और पीछे में गांठ लगा दिया, ऐसे प्रेम के साथ में कृष्ण बनते हैं, वो रस्सी प्रेम है, यदि प्रेम नहीं है तो बन नहीं सकते, इस प्रेम के लिए कठोर भजन साधन करना पड़ेगा, तब तक होगा नहीं तो ऐसे नहीं होगा, आज यही तक हम लोग समाप्त करें, कल इसके बाद की कथा ये कैसे जमुना जी का उद्धार किया, घुसबंधन अवस्था में और आगे की ले जाए, इसमें बहुत सी शिक्षाएं भरी पड़ी,
उन शिक्षाओं को ग्रहण करना चाहिए, तब हम भजन में प्रवेश कर सकते हैं। पतिता नाम पामने सपना दिए थे
वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिंहभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायिने कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरकृष्णे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्तु तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं माम चरणं कृते
हम लोग श्रीमद् भागवत की कथा कह और समर्पण कर रहे हैं, जिसमें हमने कल स्वयं ब्रह्म पर ब्रह्म कृष्ण का दामोदर लीला का वर्णन हमने किया, जो कैसे प्रेम के द्वारा बन जाते हैं, रामलीला में नहीं बंधे, नृसिंह लीला में नहीं बंधे, कोई उनको नहीं बांध सका, केवल ब्रज में यशोदा मैया ने बांधा, ये बांधा माने प्रेम के द्वारा बांधा। कल हमने बतलाया था जो दो अंगुल रस्सी कम पड़ रही थी वो पहले साधक का साधन में परिश्रम, जब तक इतना साधन में परिश्रम नहीं होगा भगवान की कृपा नहीं होगी, और कृपा नहीं होगी तो प्रेम के वशीभूत नहीं होगी, दर्शन भी नहीं होगी। इसलिए जब साधक कठोर परिश्रम करता है, भजन करता है, उस समय कृष्ण रह नहीं पाते, उसके प्रेम के वशीभूत हो जाते। इसके बाद में कृष्ण को उन्होंने बांध दिया यशोदा मैया ने। बांधने के बाद यशोदा कुछ निश्चिंत हो गई, मैंने बांध दिया, और वहां पर एकत्रित जो बच्चे थे बच्चों से कहा कि बेटो इसके साथ में यही रहना, यदि खोलने की चेष्टा करे या कहीं और जाए तो हमको तुम लोग खबर देना, मैं अभी जाती हूं, अभी शबरे का कोई काम नहीं किया, अभी दधि मंथन भी बाकी रहा है, घर में चारों तरफ में दधि फैला दिया है, इसको भी ठीक ठाक करना। इसलिए वो भीतर में चली गई, और वो कृष्ण के साथ में बच्चे सब जब मैया चली गई तो वो ताली बजा करके कृष्ण को चिढ़ाने लग गए, देखो तो कैसे मैया ने बांध दिया, और ताली बजा करके हंस रहे थे। कृष्ण जो अभी तक रो रहे थे अब जरा चुप होकर के वो भी अब हंसने लगे, आंखों से अभी आंसू निकला हुआ अभी सूखा नहीं, और वो भी हंस रहे हैं, अजय फिर ऐसा करेगा। कृष्ण ने कहा, बच्चों ने कहा अच्छा हम लोग खोल दे, बस मधुमंगल दौड़ करके आया खोलने के लिए, बहुत चेष्टा की खोल नहीं सका, और गांठ और जोर से लग गई नहीं खोल सका। इतने में सुबल आया, इतने में दूसरे आ गए उज्जैन अर्जुन वहां के, और सब आकर के खोलने लगे, एक अभी खोल रहा है, इतने में दूसरे आ गए, तीसरे आ गए, चौथे आ गए,
और रस्सी कड़ी होती गई बंदर नहीं खुला, कहा जाकर छोड़ दो, कृष्ण से कहो कि अपने आप खोल दे, बड़ा ये बुद्धिमान बनता है, बड़ा शक्तिमान मानता है। तो कृष्ण का हाथ ही नहीं पहुंचा, वो तो ओखल के पीछे वो तो बंदर काट लगी हुई थी, इसलिए उनकी भुजाएं वहां तक नहीं पहुंची, कृष्ण से भी नहीं खुली। तो बच्चों ने कहा जाकर तो एक बात करो, यहां से इसको हम लोग उठा करके इसको खेचते खेचते बाहर ले चलो, ये कीड़ा आमोद हो जाएगा, ऐसा कर करके बच्चों ने छिलना आरंभ किया और कृष्ण बात ऊपर से खेचने लगे। धीरे धीरे जाकर के वो दरवाजा के पास ही, मैं दरवाजा से तो निकाल लिया किंतु दरवाजे के पास ही दो पेड़ थे जमज, एक ही में दो, थोड़ा सा बीच में अंतर था और उसी के बीच में कृष्ण घुस गए और जब खेचा ओखल को तो वो अटक गई, ओखल एक तरफ पेड़ एक तरफ पेड़, बीच में कृष्ण निकल गए और बच्चे ताली बजाते हुए आनंद करते हुए वो भी साथ साथ में पीछे पीछे आ रहे हैं। कृष्ण को एक बात याद आई, ओ हमारे भक्त लोग जो कहते हैं उसको पूरा करने चाहिए, सत्याधिधातम निज भक्त भारतितम, हमारे परम भक्त हैं नारद जी, नारद जी ने एक बात चलते चलते कैलाश में पहुंचे और वहां उन्होंने देखा सुंदर बगीचा, उसमें एक सुंदर सरोवर, बहुत सुंदर सुंदर, उसमें तरह तरह के बेल चमेली इत्यादि फूल लगे हुए हैं और उसी के बीच में एक सुंदर सरोवर में कुछ अस्पराओं के साथ में धन कुबेर के पुत्र दो थे, जमलार्जुन, नव कुबर और मणिप्री, देवता के समान देवता तो थे ही और बड़े विराट धनी थे, बड़े सुंदर थे और उस पर भी उन लोगों ने मदिरा पान कर रखी थी और स्त्रियों के साथ में लड़कियों के साथ में पानी में सरोवर में स्नान कर रहे थे, खेल कर रहे थे। नारद जी जब जा रहे थे तो स्त्रियां उसमें से निकल आई, महिलाएं, और निकल करके कपड़े पहनकर और नारद जी को सिर झुकाते प्रणाम किया और लज्जित होकर के आड़ में खड़ी हो गई और ये मदिरापान किए हुए इसको होश नहीं ये कौन आ रहा है, उन्होंने देखा ये कोई साधारण आदमी आ रहा है, उन्होंने इनको कुछ बुरा भला कहा नारद जी, अरे तुमको मरने के लिए जगह नहीं मिली तो इधर में क्यों आया, इधर से क्यों नहीं गया, और उन लड़कियों से कहता है जल्दी आ जाओ हम लोग स्नान करें। नारद जी ने देखा ये एकदम मतवाला हो गया है, वृक्ष के समान जड़, इसकी बुद्धि नहीं कि मैं यहां पर आ रहा हूं जा रहा हूं इस पथ से और ये जड़ की भांति वृक्ष की भांति चुपचाप खड़ा है, देखो ये मनुष्य का कर्तव्य नहीं है। उनको कुछ दया आई, किस लिए, कुबेर जी नारद जी के बड़े भक्त थे और ये कुबेर जी के ये दोनों पुत्र थे, कुबेर के ऊपर में शंकर जी की बड़ी कृपा थी इसलिए विश्व में धनी माने जाते, तो उनका ये लड़का और ऐसे कुमार्ग पर चल पड़ा, थोड़ी सी इसको शिक्षा देनी चाहिए, जिन लोगों को चार प्रकार के मद होते हैं सारी मर्यादाएं भंग कर देते हैं और भगवान को भी नहीं मानते भक्तों को भी नहीं मानते, यदि किसी को धन हो जाए तो धन का अहंकार ऐसा बढ़ जाता है कि वो भगवान तक को नहीं मानते, गुरुजनों को नहीं मानते, भक्तों को नहीं मानते, विद्या का एक अभिमान होता है, यदि विद्या हो जाए तो वो किसी को नहीं, रूप का गर्व होता है अभिमान, यदि खूब सुंदर या सुंदरी कोई हो जाए तो वो किसी को नहीं समझते कुछ, तो ये चार प्रकार के मत हैं, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी है। उच्च कुल में जन्म होने का मद, सुंदर रूप का, ऐश्वर्य का और विद्या का, ये चार प्रकार, ये चार प्रकार का मद जिसको रहता है वो भगवान को, देवता को, किसी को नहीं मानता, जिसकी यही गति है। आज शराब पी करके उच्च कुल में पैदा हुआ और इस प्रकार का कुमारी ये चल रहा है। इसको अच्छी तरह से शिक्षा दूंगा कि भविष्य में ऐसा न कर सके। जब तक कि लोगों को कांटा जब किसी के पैर में लगता है तब उसको मालूम होता है कि कांटा गड़ा है। जानवरों को कोई मारता है, पशुओं की बलि देता है, मुर्गी तुर्गी खाता है, उनके डिंब खाता है, पशुओं की हत्या करता है, पक्षियों को गोली मारता है और उसको यदि कांटा लगे तो चुभा दो, तो उसको एक मोटा सा लेकर के सुई, मोटा सुई और चुभा दो उसको, यदि उसको समझ में आएगी तो वो किसी प्राणी की हत्या नहीं करेगा। ये जड़ बना हुआ है, उसको होश नहीं है, ये लाखों वर्षों तक ऐसा ही खड़ा रहे धूप में, गर्मी में, सर्दी में, और इसके हाथ भी कोई काट ले तो ये बोल ना सके, ठीक है ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा कर करके उसको भी संपा दे, जाओ तुम वृक्ष योनि में जाकर कभी वृक्ष बनाओ। जब ही उन्होंने अभिसंपात किया नारद जी ने, त्यों ही सचमुच में तो एकदम जड़ होने लगा, वृक्ष जैसा होने लगा, बस ऋषि के चरणों में गिर गया। प्रभु मेरी रक्षा करे, अब मैं कान पकड़ता हूं, ऐसा नहीं करूंगा कभी जीवन में। अच्छा जाओ तुम भक्त, शंकर जी के तुम्हारे पिताजी मित्र हैं, उनके सेवक हैं, इधर में सुनो, इधर उधर मत चित्त दो, कोई काम मत करो, हरिनाम भी मत करो और चुपचाप बैठ करके सुनो, तो तुम तो एकदम जब गिरना उनके चरणों में गिरा, अच्छा जाओ तुम गोकुल नगरी में, वृंदावन के अंतर्गत में गोकुल, जहां पर श्री कृष्ण द्वापर में अभी आएंगे और जन्म लेंगे, वहां पर करोड़ों वर्षों तक दोनों वृक्ष, दोनों भाई वृक्ष होकर के जन्म ग्रहण करो और वहीं पर पड़े रहो। लोग तुम्हारी डालियों को काटेंगे किंतु तुम कुछ कर नहीं सकेगा, और ऐसे हाथ उठा करके खड़ा रहेगा दिन भर रात भर जीवन भर अविसंपात देने के बाद। जब कृष्ण आएंगे द्वापर युग में तब तुमको स्पर्श करने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। इसके बाद में नारद ऋषि चले गए और ये गोकुल में जन्म लेकर के वृक्ष के रूप में रहे, हजारों करोड़ों वर्षों तक वहीं पर पड़े रहे। जब कृष्ण का जन्म हुआ और ये यशोदा मैया उनको बांध दिया तो उनको याद पड़ी कि हजारों वर्षों तक, लाखों वर्षों तक मेरे लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, इनका उद्धार होगा, इसलिए आज हमको नारद जी की बात को सत्य करके दिखलाना है। इसलिए कृष्ण बच्चों की टोली लेते हुए और ओखल को लेते हुए वहां पर आए। ओखल अड़ गई, कृष्ण भी बंधन में है और कृष्ण ने उस वृक्षों को नहीं छुआ, कृष्ण को रस्सी छुई थी और रस्सी से ओखल बंधी थी और ओखल में ऐसी शक्ति संचरित की जो दोनों पेट बड़े जोर से शब्द करते थे पृथ्वी के ऊपर। वो तो ऐसा हुआ जो सीधे नहीं गिरे, वो ऐसे गिरे, नहीं तो बच्चे दब जाते, कृष्ण भी दब जाते। जब गिर पड़े तो कृष्ण क्षण भर के लिए चुपचाप वहां पर हो गए और इतने में से दो देवता, एक इधर में से एक अत्यंत सुंदर रूपवान देवता उसमें से निकले। उन लोगों ने कृष्ण की स्तुति की, उनकी परिक्रमा की, परिक्रमा करके तब उन्होंने कृष्ण से कहा जे प्रभु हम आपसे यही वर मांगते हैं। नारद जी ने हमारे ऊपर में बड़ी भारी कृपा की, कोटि कोटि वर्षों के साधन से कृष्ण नहीं मिलते, आज बिना साधन के ही आपने हमारे ऊपर में अभिसंपात देकर के अभिसंपात नहीं किया, बल्कि आपकी ये करुणा थी, आपका क्रोध ही करुणा है, इसलिए आपने करुणा की। ये कृष्ण को बड़े बड़े देवता लोग, ब्रह्मर्षि लोग नहीं पाते और आज हमको ये मिल गए, आप हमको मिल गए हैं, इसलिए ऐसा करुणा करें जो मुख से सब समय आपका नाम हो, आपके कथाओं का वर्णन कर सके और मन के द्वारा आपकी कथाओं का चिंतन करते रहे, आपका रूप का चिंतन कर रहे हैं और वाणी के द्वारा आपका गुणानुवर्णन करें, कानों से सब समय आपकी कथाएं सुने, यदि जन्म भी हो तो भक्तों के यहाँ जन्म हो, जैसे कि ये सब शुद्ध सुविधाएं हैं। हम लोग मनुष्य जन्म से नहीं करते हैं, इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते। कृष्ण ने उनके तरफ में अधिक देखा भी नहीं, वो लोग आदेश मांग करके चले गए, कुछ नहीं, किंतु उनकी गति क्या हुई, कृष्ण बंधे रहे और बनते हुए भी इनको मां से उद्धार कर दिया, अपने तो मां के बंधन में बैठे बने हुए हैं और इनको उद्धार कर दिया, माया से एकदम जन्म और मरने के श्रृंखला से उनको खोल दिया, ऐसे ये कृपालु है। इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में नंद बाबा ब्रह्मांड घाट में यमुना में स्नान करने के लिए जा रहे थे, पाशी में ब्रह्मांड घाट, जसोदा मैया अपने तो दधि मंथन में लग रहे, किंतु ये पेड़ जो बहुत जोर से सप्त करके प्रचंड वेग से जो गिरा, न आंधी न वर्षा न कुछ, बहुत जोर से सप्त हुआ, शब्द से नंद बाबा कहां से शब्द हुआ, पेड़ बहुत ऊंचे ऊंचे थे, ना देखा अरे ये तो पासी में हमारे घर के पास में ये पेड़ थे, ये गिरे हैं, कहीं कृष्ण की कोई गड़बड़ तो ना हो गया हो, बस वहीं से दौड़े, उपानंद जी जहां थे वहां से दौड़े, जसोदा मैया फिर घर से दौड़ी, अरे देखे तो गोपाल कहां है, जहां देखा तो जहां पर बांध करके रखा था वो तो है नहीं, कहां गया, कहीं पेड़ के नीचे दब तो नहीं गया, इस तरह से वो भी दौड़ी, सारा ब्रज के लोग जितने थे महिलाएं पुरुष बच्चे वृद्ध सब लोग वहां पर उपस्थित, जो सौदा मैया ने देखा ये पेड़ की जड़ में कृष्ण बचा हुआ है, मरा नहीं, दबा नहीं, बस दांतों में अपनी उंगली उठ लेगी, अरे जब ये बंधा होता तो ये कलंक आता और हमारा बेटा मर जाता, हाय हाय मैंने क्या किया, रोने के लिए अब आंसू नहीं रहे, सुख गए। नंद बाबा दौड़े, देखा जैसे अरे तो बीच में कृष्ण खड़ा पड़ा हुआ है और बंधा हुआ है, ओखल से झट दौड़ करके आए, कौन बांधा क्या हुआ, दौड़ करके आकर के झपट करके कृष्ण को अपनी गोदी में ले लिया और कृष्ण बाबा को देखते ही पिताजी को देखते ही और बड़े जोर से रोने लग गए। यदि कोई बेटा है उसको कोई एक थप्पड़ मार दे या दो चार आदमी मिल करके मारे और उस समय नहीं रोएगा, किंतु अपने पिता और माता को या अपना कोई स्नेही व्यक्ति को देखे तो झट रोने लग जाएगा, इसलिए कृष्ण रोने लगे, इतने जोर से लगे रोने, हिचकी बच गई। नंद बाबा ने कुछ कहा था पहले, बेटा किसने बांधा, कृष्ण कहते हुए भी नहीं कह रहे हैं, छोटे अभी बच्चे हैं, नंगे अभी रो रहे हैं, खुद जोर से लंबी लंबी सांसें ले रहे, किसने बांधा बतलाओ तो आज मैं उसे दुरुस्त कर दूंगा। अच्छा ठहरो, एक पॉकेट से लड्डू निकाला, लड्डू किस चीज का, गुड़ में पका हुआ चना और गेहूं भुने हुए और उसमें गुड़ का पाकर के इतने बड़े बड़े लड्डू थे, बस निकाल करके कृष्ण को दिया। कृष्ण का भी हिचकी तो बंद हो गई किंतु अभी लंबी लंबी सांसें चल रहे और बीच में ऊ कर रहे, उन्होंने बड़ी मुश्किल से धीरे 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 उसके गांठ को खोला और गांठ को खोल करके उसको ओखल को अलग कर दिया और गोदी में ले लिया। अजय बांधा किसने तुम्हें, बड़ी मुश्किल से बोले, भैया को देख रहे थे कहीं नहीं, वो तो बड़ी दूर से डरी हुई सबकी हुई तू, वहां उन्हें कान में कहा मैया, मैया इतनी निष्ठुर जो तुम्हें बांध दिया, बड़ी निष्ठुर है, अच्छा आज मैं उसे देखूंगा। कृष्ण से पूछा, बांधा तो मैया, खोला किसने, अजय बाबा ने खोला, बाबा माने पिताजी ने खोला, भैया के पास नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, कभी जाएगा, कल जाएगा, परसों जाएगा, नहीं नहीं जाऊंगा, ठीक अब मत जाना, और आएगी ना तो उसे अच्छी तरह से पीट दूंगा, जब हाथ उठाया जो पीट देंगे तो कृष्ण ने उनका हाथ पकड़ लिया, इसलिए हाथ पकड़ा मारो मत। थोड़ी देर के बाद में देखा जब यशोदा वहां पर खड़ी है, उसके तरफ रोष भरे नयनों से देखा, तुमने इतने निश्चित होकर के इसे बांधा, आज जब ये पेड़ी से ऊपर में गिर गया होता तो ये मर गया होता तो क्या होता। इसके बाद में क्रोध भरे हुए होकर के नंद बाबा ने बलदेव वहीं पर खड़े थे, बलदेव को अपने कंधे पर चढ़ाया दाहिने और कृष्ण को बाएं कंधे पर चढ़ा दिया, और चढ़ा करके दोनों को एक एक हाथ में लड्डू पहले कृष्ण को दिया था, बलदेव को भी दे दिया और ब्रह्मांड घाट भी दे गए। वहां पर उन्होंने स्नान किया, बच्चों को स्नान कराया पहले, और स्नान करके अभी तक आज इतना समय हो गया 10, 11, 12 बज गया, आज तक अभी किसी ने स्नान नहीं किया, न कुछ खाया न पिया न कुछ, ये सवेरे से ही घटना चल रही है, ब्राह्मण मुहूर्त से ही सवेरे के 4 बजे से घटना चल रही है। आज घर में रसोई भी नहीं बन रही, सभी इसी में व्यस्त है। यशोदा माँ को तो मानो शरीर जड़ एकदम हो गया, शरीर में मैंने लकवा मार गया, लकड़ी की भांति हो गई, वहीं पर खड़ी की खड़ी रह गई। रोहिणी मैया और उपानंद जी की पत्नी और सब स्त्रियों ने उनको पकड़ करके उनके घर में भेजे गए। ये ब्रह्मांड घाट से आते आते घर पर आए तो 3-4 बज गया, आकर के आज बाहरी दरवाजे पर बैठे, आज अंदर महल में नहीं गए, ब्रज में या उत्तर भारत में एक ही घर के अंदर में बहू में पत्नी बेटे ये सब नहीं रहते, एक बाहर का होता है दरवाजा द्वार और एक होता अंदर महल, अंदर महल में स्त्रियां रहती हैं केवल, और बाहर दरवाजे के बाहर में उसे बाहर में लड़के लोग रहते हैं, पुरुष लोग रहते हैं, वहीं पर सोते हैं, बस खाने के लिए वहां घर पर जाएंगे या कोई विशेष काम हुआ, और नहीं तो ये बाहर महल में रहेंगे। स्त्रियां और पुरुष सब एक नहीं, एक फ्लैट में सब यदि दो ही घर हैं तो एक घर में रसोई और एक घर में स्त्री, लड़का लड़के की बहू अपनी बहू फिर लड़की आई, सभी लोग ऐसा वहां पर नहीं, भारत में सर्वत्र ही ऐसा। तो वह अंदर महल में न जाकर के वही बाहर पर बैठे जहां पर राज दरबार उनका लगता था, वहां पर बैठे द्वार पर। 4 बज गया, उन्होंने मिश्री मंगाई और कृष्ण को गाय ले आकर के और उनके मुख में तोड़ दूध दे दिया, दोनों भाई एकदम भर पेट दूध पिया और मिश्री चूसा। अब करते करते शाम हो गई, अभी तक रोटी नहीं बन रही। शाम जब हो गई तो रोहिणी मैया और दूसरी माताएं जो थी उनसे रहा नहीं गया, वो सभी मिल करके बलदेव को साथ में लेकर के जहां पर कृष्ण थे वहां पर गई नंद बाबा के पास। रोहिणी मैया ने कृष्ण को ऐसे ऐसे बुलाया तो उन्होंने मुख फेर दिया उनके तरफ, उनके तरफ देखा और महिलाएं बुला रही हैं नहीं गए, बाबा के गोदी में और छिपक करके बैठ गए जैसे अब कोई इनको खींच करके नहीं। इन लोगों ने समझा करके बलदेव जी को भेजा, बलदेव जी वहां पर गए और कृष्ण को पकड़ करके खींचने लगे। जब खींचने लगे तो आज कृष्ण में इतना बल न जाने कहां से आ गया, ऐसा झटका मारा जो वो जाकर के बलदेव घर में गिर गए और मुख लेकर के ऐसे हो गए आज इतना बल, और दिनों में उनकी आदेश को मानता था आज नहीं माना। रोहिणी मैया और सब निकट में आ गई, बोले ये बेटा भैया के यहां नहीं चलेगा, अतुल नहीं जाएंगे। उस समय में रोहिणी जी कह रहे हैं तू कहां रहेगा, तो बाबा के साथ में खेलेगा, किसके साथ में, बाबा के साथ में और बलदेव भैया के साथ में, दाऊ भैया के साथ, खाएगा क्या, तो बाबा धारो सुन खिला देंगे, गैया का दूध मिश्री चुसा देंगे, तो जाएगा ही नहीं, अब तो नहीं जाएगा। तो जो वो कहती है रोहिणी मैया यदि तेरी मैया राम राम हो जाए तो माने मर जाए तो जब सुना जब मैया मर जाएगी तब आप उनसे रहा नहीं, मैया मैया कह करके जोर से चिल्लाने लगे रोने लगे, और नंद बाबा के गोदी से ही अब हाथ बढ़ाया ऐसे मैया की गोदी में जाए, इतनी जोर से रोने लग गए कि वहां पर जितनी महिलाएं थी सब रोने लग गई, नंद बाबा भी रोने लग गए। रोनी मैया झट आकर के अपनी गोदी में ले ली और ये तब तक खूब रोते रहे। पासी में यशोदा जी अब धीरे धीरे रो रही। अब कृष्ण को देखा जो रोनी मैया ने गोदी यशोदा जी की गोदी में उतार करके रख दिया, अब तो वो खूब जोर से फूट फूट करके अब रोने लगे, आंसू उनके नहीं। जब खूब काफी रो लिया लोगों ने समझाया, फिर रसोई बनी। संक्षेप में रसोई बनाए, पर नंद बाबा को बुलाया गया, उपानंद आए और सब जितने ज्ञाति पुराने बूढ़े लोग और बड़े लोग थे सबको बुलाया। और तब फिर नंद बाबा ने उनको कृष्ण और बलदेव को अपनी गोदी में बैठा करके और खिलाने के बाद में सब तो यशोदा मैया तो खा नहीं और सब लोग खाने के लिए बैठे तो यशोदा मैया अपना खाए, तो कृष्ण जाकर के उनके लेकर के और उनकी गोदी में बैठ करके उनके घूंघट को हटा दिया और घूंघट उठा करके पकड़ करके उनको उनका साड़ी खींच करके नंद बाबा के हाथ धीरे धीरे ले गए। फिर नंद बाबा ने कहा जाओ ऐसा मत करना, ऐसे फिर इसको मत मारना, देखो ये किसके लिए हो रहा है, ये कृष्ण परब्रह्म है। आज ये लोग अपने प्रेम से कृष्ण को बांधा और कृष्ण भी जिनके डर के मारे और रोते हैं और इतना ये लोग ये ब्रजवासियों के लिए भी संभव, दूसरों के लिए संभव। इसलिए परब्रह्म को यदि पाना है तो कृष्ण के प्रति ऐसी ममता करो जैसे नंद बाबा यशोदा की, जैसे ब्रजवासियों की ममता कृष्ण में, कृष्ण मेरा है, यदि खिलाएंगे तो खाएगा, सुलाएंगे तो सोएगा और चलाएंगे तो चलेगा, नहीं तो ये कुछ नहीं कर सकता, ये तो करवट भी नहीं बदल सकता, 3 महीने तक करवट ही नहीं बदल सका है। परब्रह्म गोवर्धन को धारण कर दिया और सब काम कर दिया, किंतु ब्रजवासियों के प्रेम में अपने को उनका बेटा, उनका सखा और उनका प्रियतम समझता है और कुछ नहीं, भगवान की भगवत्ता भी लुप्त हो जाती है। इस तरह से ब्रज में रह करके तरह तरह की लीलाएं कर रहे हैं, उनका रसास्वादन कर रहे हैं। थोड़ी दिन के बाद में और बड़ा हुआ, अब गायों को लेकर के चराने जाता है, गायों को नहीं बछड़ों को। इसमें उन्होंने प्रलंबासुर को और दूसरे अघासुर बकासुर इत्यादि का वध उन्होंने किया, उनका उद्धार किया। एक दिन कृष्ण गोचारण करते 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 से जब बाहर निकले, सपौली अभी ग्राम है, वहीं पर चौमा नाम का ग्राम है, अभी उसकी साक्षी में है। चौमा माने चार मुख वाला चतुर्मुख ब्रह्मा, यहां पर की कृष्ण की परीक्षा ली या कृष्ण की लीला देखने की चेष्टा की। उन्होंने देखा ब्रह्मा जी ने जैसे कृष्ण अपने सखाओं के साथ में गोचारण करने के लिए निकले, जितने सखा थे और ये बाल बाल थे, ये थे कौन, जितने ये बछड़े थे देख रहे हैं या बछड़ियां, सब वेद की एक एक मंत्र और ऋचाएं हैं, साधारण नहीं, वो गाय बने हुए हैं और कृष्ण उनका पालन करते हैं, साधारण नहीं। और कृष्ण परब्रह्म है, सखा लोग कौन है, ये कृष्ण से ही निकले हुए, कृष्ण के गाय भी हुए हैं। इसमें कुछ कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि बड़े बड़े ऋषि महर्षि लोग लाखों करोड़ों वर्षों तक तपस्या करने के बाद में उनके सखा बने, साधारण नहीं, ये चाहे तो कोटि कोटि ब्रह्मा को पैदा कर दे, ऐसे शक्तिमान हैं। उनके साथ में बछड़े चराते हुए जा रहे थे, इतने में उन लोगों ने देखा एक पहाड़ सा लंबा पहाड़ सा देखा। उन्होंने एक कोई कहा कि देखो ये पहाड़, ये सांप ही मानो पहाड़ है, बड़ा भारी अजगर, और था वो अजगर साथ कंस का, वो एक व्यक्ति था, कंस का चर था।